ये संसार की सृष्टि कैसे होती है और उसका संहार कैसे होता है, ये वाला प्रसंग था जिसमें कि सृष्टि का क्रम आपने पढ़ा, अब उसका संहार कैसे होता है उसे आपको पढ़ना है। तो आपकी पुस्तक में बताया गया कि इत्थम उत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य घटादेहे, कि इत्थम माने इस प्रकार से जो उत्पन्न हुआ माने सृष्टि जिसकी हुई, ऐसा जो रूपादिमतः रूप रस आदि से युक्त जो कार्य द्रव्य है घट पट आदि, उस घट पट आदि के जो अवयव हैं, तो घट के घट का अवयव जो है वह क्या होता है, कपाल होता है, पट का अवयव क्या होता है तो तंतु होता है। तो इस तरह से जितने भी कार्य द्रव्य हैं घटादि पटादि हैं, उनके जो अवयव हैं कपाल तंतु आदि, उस अवयव में जो है नोदन और अभिघात नाम की क्रिया होती है। आपने देखा था कि सृष्टि के क्रम में भी पहले क्रिया होती थी, फिर उस क्रिया के द्वारा जो है संयोग होता था, तब जाकर के फिर व्यनुक की उत्पत्ति होती थी दो परमाणुओं से। तो यहाँ पर भी जो है क्या होता है कि दो तरह का द्रव्य है, अवयवी द्रव्य और अवयव द्रव्य। अवयव द्रव्य कहते हैं कि जिससे घटपट आदि बनता हो, जिससे अवयवी बनता है वह हो गया अवयव। जैसे कपाल से घट बनता है तो कपाल है अवयव, घट है अवयवी। ऐसे ही तंतु से पट बनता है तो तंतु हो गया अवयव और पट हो गया अवयवी। तो यहाँ जो संहार की प्रक्रिया बताई जा रही है, इसमें कहते हैं कि जो घटादि जो अवयवी है, उस अवयवी का जो अवयव कपाल आदि है, उस कपाल आदि अवयव में दो तरह की क्रिया होती है, बा माने अथवा, या तो नोदन क्रिया होती है या अभिघात क्रिया होती है। ये दोनों क्रिया का ही नाम है। अब इसको समझिए कि नोदन क्या है और अभिघात क्या है। तो दो तरह का संयोग होता है, एक तो नोदन नाम का संयोग, एक अभिघात नाम का संयोग। बहुत ही धीरे से जो टच किया जाता है, धीरे से जो संयोग होता है उसको नोदन कहते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो आप क्लिक करते हैं तो बहुत धीरे से वहाँ पर जो है ना टच करते हैं, तो वो धीरे से जो टच किया जाना है उसी का नाम है नोदन। अगर इसको शास्त्र की शैली में कहें तो मृदु संयोग कह सकते हैं। तो मृदु संयोग को ही नोदन कहा जाता है, धीरे से टच करना। और अभिघात कहते हैं कठोर संयोग को, माने उसको जोर से जो है ना टच करना। तो या वो जो अब कपाल आदि अवयव हैं, उन अवयवों में हैं या तो नोदन क्रिया होती है माने मृदु संयोग होता है, अथवा अभिघात क्रिया होती है अर्थात कठोर संयोग होता है। तो या तो मृदु संयोग हो या कठोर संयोग हो, इस तरह से कोई एक क्रिया होती है और उस क्रिया के बाद तया विभाग, और उस क्रिया होने से क्या होता है तो विभाग होता है। किसमें विभाग होता है, तो वह जो कपाल आदि अवयव का जो संयोग था उसी से तो जनुक उसी से तो जो है सृष्टि हुई थी उसके संयोग से। तो यहाँ पर क्या है कि जब उसमें नोदन और अभिघात नाम की क्रिया होती है तो फिर अवयवों में परस्पर जो है ना वो विभाग होता है। अवयवों में संयोग होने से सृष्टि होती है और अवयवों में विभाग होने से संहार होता है, नाश होता है। तो वही कहा कि नोदन नाम की क्रिया या अभिघात नाम की क्रिया अवयव में होती है, उस क्रिया से विभाग, फिर अवयवों में परस्पर विभाग होता है, एक दूसरे से अवयव जो है अलग हो जाता है। तेना अवयवी आरंभकस्य असमवायुभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते। और इससे क्या होता है कि अवयवी जो घट पट आदि है उसका जो आरंभक है, आरंभक माने आरंभ करने वाला, सृष्टि करने वाला, तो अवयवी घटपट आदि का जो आरंभक है, माने सृष्टि करने वाला है, बनाने वाला है कौन, तो असमवाय कारण जो संयोग था, आपको याद होगा कि सृष्टि के क्रम में आपको पढ़ाया गया था कि जनुक जैसे है तो जनुक में परमाणु जो है वह समवाय कारण है, और दो परमाणुओं का जो संयोग है वह असमवाय कारण है, और अदृष्ट आदि जो आठ थे वो निमित्त कारण है। तो यहाँ पर जो है ना, वो जो क्रिया होने के बाद विभाग होता है और अवयवों में विभाग होता है, और उस विभाग होने के कारण जो अवयवी द्रव्य का आरंभक जो असमवाय कारण है कौन, संयोग है, अवयव संयोग, कपालद्वय संयोग या तंतु संयोग, ये जो असमवाय कारण है तस्य नाशः क्रियते, उसका जो है नाश हो जाता है। ततः कार्य द्रव्यस्य घटादेह अवयविनो नाशः, और उसके बाद जो कार्य द्रव्य घटपट आदि है अवयवी, उस अवयवी का नाश होता है। तो सारांश में ये निकला कि पहले अवयव का पहले जो है क्या होता है कि अवयव में क्रिया होती है, फिर उस क्रिया होने से अवयवों में विभाग होता है, अवयवों में विभाग होने से अवयव का जो संयोग है उस संयोग का नाश होता है, और संयोग का जब नाश हो गया तो फिर अवयवी जो घटपट आदि है उसका भी नाश होता है, यही इसका क्रम है। इसी को आगे कहा कि एते न अवयवी आरंभक असमवाय कारण नाशो दर्शिता, इस तरह से अवयवी का जो आरंभक है असमवाय कारण, उस असमवाय कारण का जो है नाश हो जाता है, जिससे अवयवी का भी नाश होता है। असल में क्या है कि न्याय दर्शन में दो प्रकार से नाश माना गया है, एक तो माना गया है अवयवी आरंभक असमवाय कारण के नाश होने से नाश होता है, जैसे कि असमवाय कारण होता है संयोग, उस संयोग का नाश हुआ तो अवयवी का भी जो है नाश हो गया, तो इस तरह से एक प्रकार का नाश हुआ। दूसरा जो है नाश जो न्याय दर्शन में सम्मत है वो ये है कि समवाय कारण के नाश से होने से द्रव्य का नाश होता है, तो वो आगे बताते हैं, कहते हैं कि क्वचित माने कभी कभी, ये कभी कभी का भी मतलब समझ लीजिए कि दो तरह का प्रलय होता है, एक होता है खंड प्रलय, एक होता है महाप्रलय। तो खंड प्रलय में कुछ वस्तुओं का नाश होता है, सारी वस्तुओं का नाश नहीं होता है, किंतु महाप्रलय में समस्त वस्तुओं का नाश हो जाता है। तो अभी जो समवाय कारण संयोग के नाश होने से जो अवयवी का नाश बताया गया, ये तो खंड प्रलय की बात है। जैसे मान लीजिए एक घड़ा लाया आपने खरीद करके, घड़ा जो है नीचे गिर गया, फूट गया, तो उसका नाश हो गया, तो वो जो नाश हुआ वो कैसे हुआ, तो उसकी प्रक्रिया आपको बताई गई। लेकिन एक ऐसा भी, एक संहार जब होता है, सृष्टि का संहार जब होता है तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए क्वचित से बताया गया कि क्वचित समवाय कारण नाशे द्रव्य नाशः। इसमें क्या होता है कि समवाय कारण जो परमाणु है उसके नाश हो जाने से फिर सारे द्रव्य का नाश हो जाता है, सारे द्रव्य मतलब वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब जितने भी हैं सबका नाश हो जाता है। यथा पूर्वोक्तस्येव पृथिव्यादेह, अब उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं कि कैसे समवाय कारण के नाश होने से द्रव्य का नाश होता है। कहते हैं कि यथा, जिस तरह से पूर्वोक्तस्येव पृथिव्यादेह, पूर्व में जो पृथ्वी आदि द्रव्य बताए गए हैं उनका संहारे, उनका जब संहार का काल आता है तो संजहीरसोर महेश्वरस्य संजहीरसा जायते, उस समय में जब संहार काल आता है सृष्टि का तो महेश्वर जो हैं महादेव वो संजहीरसु होते हैं, माने संहार करने की इच्छा जो है जागृत होती है महेश्वर में। वही कहा कि संजहीरसो हो महेश्वरस्य, माने संहार करने के जो इच्छुक महेश्वर हैं उनमें संजहीरसा माने संहार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संजहीरसो जो है ये संजहीरसु शब्द का षष्ठी के एक वचन का रूप है, और संजहीरसु का मतलब होता है संहार का इच्छुक। तो यह विशेषण है महेश्वर का कि संहार का इच्छुक जो महेश्वर, उस महेश्वर में संजहीरसा उत्पन्न होती है, माने संहार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ततः और उस इच्छा के उत्पन्न होने के बाद फिर क्या होता है कि उनके महेश्वर के प्रयत्न से द्वनुकारंभ केशु परमाणुषु क्रिया। आपने देखा था ना कि सृष्टि का सबसे पहला जो होता है वह द्वनुक होता है, और उस द्वनुक का आरंभक कौन होता है, उसको आरंभ करने वाला कौन होता है, परमाणु होता है। तो द्वनुक का जो आरंभक है, सृष्टि आरंभक जो है परमाणु, उस परमाणु में क्रिया होती है, तया विभाग है। उस परमाणु में क्रिया होने पर फिर जो है परमाणुओं में परस्पर विभाग होता है, ततः तयो संयोग नाशे सति, और उस विभाग होने के कारण परमाणु द्वय का जो संयोग हुआ रहता है उस संयोग का नाश हो जाता है, नाशे सति द्वनुकेशु नष्टेशु। और फिर जब उस तरह से द्वनुक नष्ट हो जाता है, और द्वनुक जब नष्ट हो गया तो आश्रय द्वनुक है, उस द्वनुक रूपी आश्रय पर ही जो टिका रहता है, त्रनुक रूपी आश्रय पर टिका होता है, चतुर्णुक रूपी आश्रय पर टिका रहता है, पंचानुक। तो इस तरह से आश्रय के नाश हो जाने से वही कहा कि स्वाश्रय नाशात त्रनुकादि नाशः, आश्रय जो द्वनुक आदि है उसका नाश हो जाने से त्रनुक आदि का नाश हो जाता है, एवं क्रमेण पृथ्व्यादि नाशः। और इस तरह से इस क्रम से धीरे धीरे माने द्वनुक का नाश हुआ, फिर त्रनुक का नाश हुआ, चतुर्णुक का नाश हुआ, इस तरह से धीरे धीरे नाश होते होते पहाड़ पर्वत पहाड़ समुद्र इस सब का भी जो है पृथ्वी आदि का भी नाश हो जाता है। यथावा तंतु नाम नाशे पतनाशः, ताकि आश्रय के नाश होने से आश्रयी का नाश हो जाता है। इसका उदाहरण दिया कि जैसे पट है और तंतु है, तो पट का आश्रय है तंतु, और तंतु का अगर नाश हो जाएगा तंतु रूपी आश्रय का, तो पट का तो नाश हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्त्र है, एक एक उसमें से सूत खींचते जाइए तो क्या होगा, वस्त्र का नाश हो जाएगा ना। तो इस तरह से जो है संहार की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि आश्रय का नाश होता है और पहले, और आश्रय का नाश होने से आश्रयी का नाश होता है। ठीक उल्टा है, पहले जो क्रम बताया गया था उसमें क्या था कि आश्रयी का पहले नाश होता था, आश्रय का बाद में नाश होता था, और इसमें क्या कि पहले आश्रय का नाश होता है, बाद में आश्रयी का नाश होता है। फिर आगे कहा कि तद्गतानाम रूपादीनाम, और वो जो पट आदि में जो रूप हैं उनका कैसे नाश होता है, तो आश्रयी में रहने वाला जो रूप रस आदि है उसका कैसे नाश होता है, तो कहा कि स्वाश्रय नाशे नैव नाशः, कि उसका जब जैसे पट का आश्रय है तंतु, तो तंतु का जब नाश होगा तो पट में रहने वाला जो रूप है उसका भी नाश हो जाएगा। तो तदगतानाम रूपादीनाम माने पटादि गतानाम रूपादीनाम स्वाश्रय नाशे नैव नाशः, तो पट आदि का भी आश्रय के नाश से ही नाश होता है, पट आदि में रहने वाला जो रूप आदि है उसका भी आश्रय के नाश से ही नाश होता है। आगे कहते हैं कि अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब ये है कि दो तरह का पदार्थ है, एक है जहाँ पर कि पाकज रूप होता है, और एक होता है कि अपाकज रूप होता है, जिसमें पाक संभव हो सकते, पाक जानते हैं ना, तेजो विलक्षण संयोग, ये मैंने पहले बताया था। तो जहाँ पर पाक संभव है, जैसे पट में जो है पाक संभव नहीं है, उस आग में अगर कपड़े को देंगे तो वो तो जल ही जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जहाँ पर माने पाक संभव नहीं है वहाँ के लिए ये बताया गया कि तंतु के नाश से पट का नाश होता है, आश्रय के नाश होने से पटादि का रूप का भी नाश हो जाता है। लेकिन अन्यत्र माने जहाँ पर पाक संभव है, जैसे घड़ा है, आम है, केला है, इन सबों में पाक संभव है, तो वहाँ के लिए कहते हैं कि अन्यत्र तो सती एवं आश्रय, कि अन्यत्र जहाँ पर पाकजत्व संभव है वहाँ पर सती आश्रय माने आश्रय के विद्यमान रहने पर भी क्या होता है कि विरोधी गुण प्रादुर्भाव है ना, कि उसके समान कोई विरोधी गुण वहाँ पर प्रादुर्भूत हो जाता है, इससे उसका रूप नाश हो जाता है। उदाहरण देकर के समझाते, यथा पाके न घटा दो रूपादि नाशः, कहा कि जैसे घट आदि का रूप है तो उसका जो है जब तक कच्चा घड़ा रहता है उसका रूप अलग होता है, लेकिन जब उसमें पाक क्रिया होती है फिर उसका घटादि का रूप जो है लाल हो जाता है, काला हो जाता है। तो इस तरह से विरोधी गुण पहले जो वो मटमैला वाला जो रूप था उसका विरोधी गुण का प्रादुर्भाव हो गया, विरोधी गुण हो गया वहाँ पर लाल कलर या काला कलर उसका प्रादुर्भाव हो गया, और विरोधी गुण के प्रादुर्भाव हो जाने से वहाँ पर घटादि में घटादिगत जो रूप आदि है उसका नाश होता है। तो इस तरह से जो अवयवी में रहने वाला जो रूप आदि है उसका दो प्रकार से नाश बताया गया, एक तो आश्रय के नाश से नाश होता हो जाता है रूप आदि का, दूसरा बताया कि जहाँ पर पाकजत्व संभव है वहाँ पर विरोधी गुण के प्रादुर्भाव हो जाने से रूप आदि का नाश होता है। इस प्रकार से इन्होंने बड़े ही संक्षेप में संहार की भी प्रक्रिया आपको बता दी, लेकिन चलिए एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि कैसे जो है सृष्टि होती है उसका क्रम क्या है और कैसे संहार होता है उसका क्या क्रम है। इस तरह से हमने अभी संहार का क्रम पढ़ा और आज का पाठ यहीं स्थापित करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।